हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवदीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्षेत्रं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति, गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मत भागवत महापुराण की जय हो। कल हमने पढ़ा कि जब समस्त शवों का अंतिम संस्कार हो गया और उसके बाद सबने पांडवों ने मिलकर अपने अपने स्वजनों को गंगा का उदक जल पिंडदान किया। तो उसके बाद क्योंकि सब बहुत ज्यादा विह्वल हो गए थे, दुखी हो गए थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो भगवान ने उनको सांत्वना दी। भगवान ने सांत्वना दी और कहा, भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्न प्रतिक्रियम, कि ये तो काल की गति है और ऐसा काल इतना प्रभावशाली है, काल इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि जो करना चाहता है वो कर ही देता है, तो फिर उस पर इतना ज्यादा दुखी होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शोक करने से वो घटना जो घटी है वो पुनः बदल तो नहीं जाएगी, तो फिर इतना ज्यादा शोक करने की क्या आवश्यकता है। बहुत ज्यादा भगवान ने इन्हीं शब्दों के द्वारा उनको सांत्वना दी। और आगे सूत गोस्वामी बताते हैं श्लोक नंबर 5 में, कृपया मेरे साथ साथ पढ़िए। साधयित्वा जात शत्रु स्वम्राजं कृतवै हितम् घातयित्वा सदुराज्ञ कचस्पर्शक्षतायुष साधयित्वा जात शत्रु स्वम्राज्यं कितवै हितम् घातयित्वा सदुराज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः साधयित्वा जात शत्रु स्वम्राज्यं कितवै हितम् घातयित्वा सदुराज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः साधयित्वा जात शत्रु। साधयित्वा अर्थात संपन्न करके अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसके कोई शत्रु ना हो उसका। स्वम्राजम कितवय हृतम, स्वम्राजम अर्थात अपना राज, कितवय अर्थात दूतों के द्वारा, धूर्त जो दुर्योधन तथा उनका जो दल था उनके द्वारा हृतम छीन लिया गया था। घातयित्वा यानी वध कराकर, असतः दुष्ट, घातयित्वा सतो राज्ञ, राज्ञ का मतलब राजा के, कच स्पर्श, कच मतलब केशों को, स्पर्श मतलब छूने से, क्षत आयुष जिनकी आयु क्षत हो गई थी, खत्म हो गई थी, क्षीण हो गई थी। यहाँ पर अनुवाद देखिए, धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने चल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था, भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए थे। अन्य लोग भी मारे गए थे क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से उनकी आयु क्षीण हो गई थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुष की ठीक से रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों के को समझने के लिए मस्तिष्क से के सूक्ष्म स्नायुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की पतिव्रता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। और नंबर 4, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे भावबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा गर्भाधान संस्कार से ही प्रारंभ हो जाती है। और नंबर 5, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत दिखावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपर्युक्त निर्देश प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण हो जाती है। कलयुग में इन प्राणियों की समुचित सुरक्षा नहीं हो रही है, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां कुलता हो जाती हैं, तो उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करना मानो अपनी आयु को खतरे में डालना है। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उस दुष्ट को असमय मरना पड़ा। ये भगवान के कुछ कठोर नियम हैं, जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं, साधयित्वा जात शत्रु। अजात शत्रु यानी जिनका शत्रु कभी जन्म ही नहीं लिया, जिनके शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया हो, इसके विषय में बता रहे हैं कि वो कौन है। युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को स्वभावतः उनका एक उनको विख्यात था, अजात शत्रु उनको कहा जाता था। हद हो गई, ये कैसे हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज जो राजा थे, और किसके, ये इंद्रप्रस्थ के राजा थे, और वास्तव में अगर देखा जाए तो यही अभी राज्य हस्तिनापुर का हस्तिनापुर वालों ने ले लिया था, और राज्य लेने के लिए ही एक तरह से ये युद्ध हुआ था और करोड़ों लोगों की हत्या हुई थी। तो वहां पर इस समय उसको अजात शत्रु कहा जा रहा है। क्या उनका कोई शत्रु नहीं था? फिर ये दुर्योधन आदि कौन थे? शत्रु नहीं थे उनके। बेशक दुर्योधन, दुशासन, बाकी जितनी भी उनकी सेना है, भले ही युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु मानती थी, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना। वो कभी भी किसी को अपने शत्रु की दृष्टि से देखते ही नहीं थे, और उनको लगता ही नहीं था कि कोई मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु थे, स्वामराजम कितवैहृतम। कितवैहृतम मतलब दूत, जो ये दुर्योधन और जितने भी दूसरे इसके साथ जो छल कपट में लगे हुए थे, जैसे शकुनी और करण इत्यादि, उन्होंने क्या किया था? स्वम राज्यम, जो उनका अपना राज था, महाराज युधिष्ठिर का अपना राज, मतलब ये राज्य उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। उनको कुछ नहीं मिला था, अगर देखा जाए तो खांडवप्रस्थ मिला था, जहाँ कुछ भी नहीं था, उबड़ खाबड़ बंजर जमीन थी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस राज्य को निर्माण किया था। उसके बाद बहुत बहुत अश्वमेध यज्ञ किए थे और मतलब सारे राजाओं को जीता था। भीमसेन ने जरासंध को जीता था। अर्जुन उत्तर की ओर गए थे और सारे भाई जो दूसरे भाई है ना उनके छोटे नकुल और सहदेव वो दक्षिण की ओर पूरब की ओर गए थे। सारे राजाओं को जीतने के बाद उन्होंने इस राज्य का निर्माण किया था। और फिर क्या हुआ, सोम राजम कृतहृतम, इस कृतहृतम इसका मतलब होता है कि दूतों ने कपट से इसी राज्य को उनसे छीन लिया। किससे छीना, अजात शत्रु, कितने भोले भाले शत्रु का, मतलब वो शत्रु ही नहीं मानते थे किसी को, उनका राज्य उन्होंने छीना था। तो जब उन्होंने जुआ से छल करके उनको राज्य छीना और फिर उनको 13 साल के लिए वनवास भेज दिया, एक साल अब अज्ञातवास करके जब वो वापस आए तो भी उनको नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे युधिष्ठिर महाराज भक्त इतने शांत होते हैं, उनको भौतिक आसक्ति कुछ होती नहीं है, भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। युधिष्ठिर महाराज ने बोला भले नहीं दो राज, हालांकि उनका अपना राज्य था, उनका अधिकार था, लेकिन फिर भी बोल रहे थे कि भले आप ज्येष्ठ पिताश्री हमें राज्य नहीं दो, लेकिन क्योंकि हम क्षत्रिय हैं तो रहने के लिए कुछ तो दे दो, कोई स्थान, 5 गांव भी यदि दे दोगे तो हम रह लेंगे वहां पर। लेकिन उन्होंने वो देने से भी मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, घातयित्व सतो राज्य, घातयित्व भगवान ने सबको, घातयित्व का मतलब होता है मरवा दिया सबको। वास्तव में भगवान इस संसार में आते हैं ना, उनके आने का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि वो पापी और दुराचारी राजाओं को मारना चाहते हैं। क्योंकि जो ये राजा होते हैं जो बहुत ही अपराधी जिनकी वृत्ति होती है उनको किसी का भय नहीं होता, वो समझते हैं कि हम भले जो भी दुष्ट कार्य करेंगे हमें कोई सजा देने वाला नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा बल है। अगर देखें तो भगवान ने जैसे जन्म लिया उन्हीं राजा, जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो कंस के भेजे हुए अलग अलग जितने भी दुष्ट राक्षस भेजते थे उनको मारा, और पहले सबसे पहले जिस राजा को मारा कंस को, अभी तक भगवान छोटे ही थे, कंस को मार डाला और इतना भगवान क्रोधित थे कंस को मारने के बाद कि उनकी शव के बाल पकड़ के ऐसे अखाड़े में खींच कर लेकर आए। और ऐसे हालांकि शव की ऐसी दशा नहीं करनी चाहिए, मामा थे, लेकिन भगवान दिखाना चाहते थे संसार को कि जो राजा अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता मैं उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। उनके शव को पटक पटक के भगवान ने इवन उनके छाती के ऊपर जंप किया, जोर से लात मारी, और फिर भगवान ने कंस को इस तरह मारने के बाद अब भगवान की योजना देखी है, कंस को मारा और भगवान को पता है इसको मारने से बाकी सारे राजा मर जाएंगे। कैसे मरेंगे, क्योंकि कंस की जो 2 पत्नियां थी वो किसकी बेटियां थी, जरासंध की बेटियां थी। अब जरासंध को जैसे पता चला कि मेरी दोनों बेटियों को विधवा कर दिया है कृष्ण ने और कंस को मार डाला है, तो अपनी 23 अक्षवणी सेना को लेकर आया और बहुत ही घमसान युद्ध हुआ, इतना खतरनाक युद्ध हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मिलकर जरासंध की सारी सेना को मार डाला। आखिर में केवल जरासंध बचे और बलराम ने जरासंध के साथ गदा युद्ध किया, उसको तकरीबन मार डाला। इतना मारा उसको कि अब बस मृत्यु होने वाली थी। तो उस समय भगवान ने कहा नहीं बड़े भैया, छोड़ दीजिए इसको, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। तब बलराम ने कहा क्यों छोड़ दूं, इसको मार डालूंगा मैं, क्यों छोड़ दूं इसको, एक गदा भी यदि बलराम जी उनको मारते ना तो उनके प्राण उसी समय निकल जाते। लेकिन भगवान ने एक उक्ति दी कि देखो भैया जीवित रहेगा तो फिर से सारे राजाओं को इकट्ठा करके लाएगा और यहाँ पर हम आराम से बैठे हैं और यहाँ पर बैठेंगे तो ये सारे राजाओं को लेकर आएगा। हमारा तो काम ही है ना अपराधियों को मारना, तो कब कहाँ से हम दोनों जाएं, एक एक कर को ढूंढे, एक एक कर को ढूंढ ढूंढ के एक एक करके लेकर आए, और ये तो सबको लेकर ही आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहीं पर बैठ के मारे। आप इसको छोड़ दो जाने, वो सुन रहा था और इतना इतना उसका अपमान हुआ। एक क्षत्रिय राजा को यदि इस तरह से अपमानित करके उसके प्राण छोड़ दिए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपमानित होता है, और बहुत ज्यादा अपमानित होने के बाद अब उसने कहा मैं इस हालत में जाऊं राज्य करने के, क्या मुंह लेकर दिखाऊंगा अपने प्रजा को, मैं वापस से राज्य करूंगा नहीं। तपस्या करने वन में चला गया, और जब वन में चला गया तो उसके कुछ मित्र राजा जो कि उनको जानते थे, उनको पता चला कि अभी जरासिंह जो है वो तपस्या करने चला गया है, तो वन में आकर उनको कहने लगे कि ये क्या आपने तपस्या करना शुरू कर दिया है, ये तो कायर ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रिय ऐसा नहीं करते, हार और जीत तो होती रहती है, ऐसा कोई भी राजा नहीं होता है कि जो सदैव जीते, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि कभी भी किसी की हार ना हुई हो। हार हुई है इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप वापस से लड़ नहीं सकते, हम वापस से दल अपना बनाएंगे और लड़ाई करेंगे और युद्ध में कृष्ण और बलराम को हरा देंगे। तो फिर वापस से वो सब गए मिलकर, बहुत सारे राजाओं की टीम बनाई वापस से, उनको लेकर गए और सारे राजाओं को, उनकी सेनाओं को मारने के बाद भगवान ने पुनः जरासंध को छोड़ दिया। ऐसे करते 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 17 बार जरासंध अपनी सेना को लेकर आए, और 17 ही बार भगवान ने उसकी सारी सेना को, समस्त राजाओं को जो अपराधी का साथ दे रहे थे, उन समस्त दुराचारियों का वध करवा दिया। लेकिन फिर भी जरासंध की हत्या नहीं की। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि भगवान उन राजाओं को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि समस्त पाप के मूल कारण दुराचारी राजा होते हैं। यदि राजा सही हो जाए ना तो प्रजा की हिम्मत नहीं होती अपराध करने की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था बताते हैं सूत गोस्वामी, गात इत्वा सतो राजा, सारे जितने राजा थे उनको मरवा दिया था। किन किन को, उन्होंने क्या अपराध किया था, कचस्पर्श क्षतायुष, कचस्पर्श क्योंकि उन्होंने स्पर्श किया था केशों का, किसके केशों का, कचस्पर्श क्षत द्रौपदी के केशों का। और इस तरह से जब उन्होंने एक सती स्त्री का केशों का स्पर्श किया था तो क्षत आयुष, उनकी आयु जो है वो क्षीण हो गई थी। यहाँ पर भगवान एक संकेत दे रहे हैं कि यदि कोई किसी स्त्री के साथ, किसी स्त्री को स्पर्श भी करता है यानी अवैध संग के लिए, तो उसी समय उसका, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। और यहाँ पर भगवान ने उत्तेजित, घातयित्वा का क्या मतलब होता है कि उनको उत्तेजित करके, अर्जुन को भगवान ने कहा, पूरी भगवत गीता भगवान, पहले अर्जुन जो है वो युद्ध करना चाह ही नहीं रहे थे, बल्कि वो तो रो रहे थे, धनुष बाण भी रख दिया और बोला कि मैं तो लड़ाई कर ही नहीं सकता, ना योत्सेति गोविंदम, मेरी त्वचा जल रही है, त्वचा व परिदह्यते, और मेरा गांडीव संस्कृते हस्ता, मेरा गांडीव धनुष में पकड़ ही नहीं सक रहा हूँ, इन समस्त अपने संबंधियों को मार कर मुझे तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए और आप इस संसार की राजाई की बात कर रहे हो। बहुत रो रहे थे, धनुष भी रख दिया, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा ही किया। अगर आते ही वो युद्ध करना शुरू कर देते ना तो भगवान गीता नहीं सुनाते। इसलिए जैसे ही अर्जुन ने भगवत गीता लड़ाई करने से इनकार कर दिया तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम सबके लिए वरदान प्रदान किया। और गीता में कई बार भगवान ने कहा कि मार डालो इनको, मारो मारो, युद्धश्चित निश्चय, निश्चय होकर युद्ध करो, केवल युद्ध करना इस समय तुम्हारा कर्तव्य है, युद्ध करो, इन सबको मार डालो, मार डालो, मार डालो। भगवान ने बहुत ही प्रेरित किया, क्यों, यहाँ पर साफ साफ बताया है, सूत गोस्वामी कहते हैं कचस पर शक शतायुष, चूंकि उन्होंने एक सती स्त्री का अपमान किया था और उनके बालों को स्पर्श किया था, तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि द्रौपदी के बाल तो केवल दुशासन ने पकड़े थे, फिर भगवान ने समस्त राजाओं को क्यों दंड दिया? वो इसलिए क्योंकि उन सब ने उसका साथ दिया था जब द्रौपदी को भरी सभा में बालों से खींच कर लाया गया, और उस समय वो स्त्री धर्म रजस्व वाला स्थिति में थी। हालांकि वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर सबसे बोल रही थी मुझे बचाओ, मेरे ऊपर आप कृपा करो, लेकिन कोई बोला तक नहीं ऐसे निर्लज सभा में, ऐसी निर्लज राजाओं की सभा में द्रौपदी को लेकर आया गया था, जहाँ पर उस अबला स्त्री को नग्न किया जा रहा था, नग्न करने की चेष्टा की जा रही थी, जहाँ पर उनके पितामह बैठे हुए थे, गुरुजन बैठे हुए थे। इस आज के कलयुग में भी कोई ऐसी सभा नहीं हो सकती है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई अधर्म करता है तो भी अपने बाप दादाओं गुरुओं से छुप कर करते हैं, लेकिन ये कैसी सभा थी, इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, कोई मुंह से कुछ बोल तक नहीं रहा था ऐसे निर्लज सभा में। तो भगवान ने उसी समय यहाँ पर कचस्तर्षक्षतायुष, उसी समय उन सबकी आयु समाप्त हो गई थी। भगवान कहते हैं अर्जुन को भगवद गीता में कि मैंने तो इन सबको पहले से ही मार डाला है। भगवान ने उसी समय सोच लिया था कि इन सब अत्याचारियों को एक एक करके खत्म करूंगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि आयु को खत्म करने का सबसे बड़ा दुष्कर्म यदि कोई है तो परस्त्री का स्पर्श करना, इससे बढ़कर कोई और दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। जैसे ही कोई जीव परस्त्री का स्पर्श करने की करता है तो समझो उसी समय से निश्चित हो जाता है कि अब उसकी आयु क्षीण हो गई है, क्योंकि स्त्री की तो वास्तव में रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि श्रेष्ठ दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण गाय स्त्री बालक तथा वृद्ध पुरुषों की ठीक से सुरक्षा की जाती थी, यानी कि इनको बहुत ही संभालना होता था, ऐसा कभी भी उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं करना होता था। तब ये आदेश था, राजा गणों के को ये आदेश दिया गया था कि ब्राह्मण गाय स्त्री और बालक और वृद्धों की ठीक से सुरक्षा की जाए। ब्राह्मण की क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की रक्षा करने से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन होता है। ब्राह्मण शिक्षा देते हैं और जिसके कारण जीव को पता चलता है, अभी ब्राह्मण अगर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वर्ण आश्रम धर्म का पालन कैसे होगा। हमारे जो संस्कार हैं, जैसे जितने भी संस्कार हैं वो हमें ब्राह्मण के द्वारा ही पता चलते हैं, तो ब्राह्मण यदि नहीं होंगे, ब्राह्मण का मतलब होता है जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो ब्राह्मण का मतलब होता है ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो दूसरे वर्ग हैं जैसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उनके आदेशों के अनुसार कार्य करके पुण्य एकत्रित कर सकें। तो यदि ब्राह्मण की रक्षा होगी तभी आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए हमें वैज्ञानिक संस्कृति प्राप्त होगी। और गायों की रक्षा करने से क्या होगा? भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म स्नायुओं को बनाए रखने के लिए दूध मिलता है, और दूध तो दूसरे जानवरों से भी मिलता है, बैल वो भैंस से भी दूध मिलता है और दूसरे जानवरों का भी दूध पीते, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो दूसरे जानवरों का दूसरे पशुओं का जो दूध होता है वो बुद्धि जो होती है उसको मंद कर देता है, फिर जो आध्यात्मिक बात होती है, इसलिए हमेशा बोलते हैं गौ ब्राह्मण हिताय थे। गौ और ब्राह्मण का आपस में क्या संबंध है? क्योंकि जब गाय का दूध पीते हैं तभी हमारे मस्तिष्क के जो सूक्ष्म वो होते हैं ना तंत्र, जो कि आध्यात्मिक बात को ग्रहण कर सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक बात को समझ सकते हैं, वो जो तत्व है ना मस्तिष्क के, वो बहुत ज्यादा अच्छे से पावर मिलता है उनको, और उनको आध्यात्मिक बात समझ में आती है। इसलिए गाय का दूध पीने वाला जो है वो बहुत ही जल्दी भगवत भक्ति को और भगवत भगवान के जो शास्त्र हैं उनके शब्दों को समझकर उनको पालन करने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन भैंस का दूध पीने वाला वो तो इसलिए गाय को माता कहते हैं। गाय माता है, यानी कि माता का ऐसा हृदय से वात्सल्य होता है कि मेरी संतान जो है वो अपने जीवन को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। और जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो गाय का दूध जो होता है, जब किसी को कोई मनुष्य पीता है तो वो वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसलिए गाय को माता कहा जाता है, लेकिन भैंस को भैंस ही कहा जाता है, उसको कभी भी माता नहीं कहा जाता। और आगे कहते हैं कि स्त्रियों की रक्षा से समाज की पवित्रता बनी रहती है। वास्तव में भक्तों, स्त्रियों की रक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समाज में पवित्रता नहीं है उसमें ना ब्राह्मण हो सकता है ना गाय रह सकती है। पवित्रता बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जहाँ पवित्रता नहीं है वहां ना शांति होगी, ना स्थिरता होगी, और ना ही जीवन की उन्नति होगी, और ना ही अच्छी संतानें मिलेंगी। इसलिए स्त्रियों की रक्षा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन आज का समाज इतना बिगड़ गया है और ये वेस्टर्न कंट्रीज से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया है कि स्त्रियां स्वयं ही नहीं चाहती हैं कि हम सुरक्षित रहें। वो स्वयं ही अपनी पब्लिसिटी के लिए बहुत सारी ऐसा है, ऐसे वस्त्र पहनना या फिर इस तरह से अपना पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ऐसे ड्रेसिंग करना, और ये सब जो है वो हमारी सभ्यता इसकी परमिशन नहीं देती है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि लस्ट जो होता है ना, काम, वो हमारे हम सबके, चाहे स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, उनके हृदय में सुप्त रीति में होता है। अब सुप्त रीति में होता है तो जैसे अगर कोई शेर सो रहा है, उस शेर को, वो सो रहा है तो हमें पता नहीं है कि वो सो रहा है या जाग रहा है। तो अगर उसको हम खाली ऐसे पिंच करके देखना चाहते हैं कि वो जाग रहा है या सो रहा है, पिंच करेंगे और तो शेर अगर जिंदा है तो क्या होगा? जिंदा है तो खा जाएगा। यानी कि अगर शेर को जगा दिया तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि अभी तुम मुझे नहीं खाओ, ये दाल सब्जी रोटी में चपाती तुमको देता हूँ उसको खाओ, है ना। उसी तरह से काम वासना सबके हृदय में होती है। तो हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है कि ऐसा कोई कार्य करें ही नहीं जिससे कि पुरुष की, मतलब स्त्री के ऊपर आकर्षण को का उसको अवसर प्राप्त हो। इसलिए बात तक ऐसी नहीं, हमारी सभ्यता हमें क्या सिखाती है कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री को आप क्या बोलो? माता बोलो। माता जब शब्द आपके मुख से निकलता है तो क्या होता है कि आपके अंदर से वो हवस जो है वो बिल्कुल साइड में, क्योंकि माता आपने बोल दिया उसको, फिर तो आपके कोई और विचार आ ही नहीं सकता ना आपके मन में। इसीलिए ये शब्द भी ऐसे यूज, अभी देखो वेस्टर्न कंट्रीज से जो प्रभावित होते हैं वो किस तरह से बोलते हैं, डियर, डार्लिंग, हेलो, जा, इस तरह से ऐसे शब्द बोलते हैं, स्वीट हार्ट या इस तरह। तो क्या होगा, वो खुद ही उसको पिंच कर रहे हैं, सोए हुए शेर को पिंच करके खाली बोलते हैं कि भाई हम खाली देखना चाहते हैं कि ये सोया हुआ है या मरा हुआ है। फिर हम कभी ये सोच नहीं सकते कि वो शेर जब जाग जाएगा तो वो किस कितना खूंखार हो सकता है, किस हद तक जा सकता है। तो वास्तव में वो ऐसा कार्य स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए जिससे कि हानि की आशा हो। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि उज्जवल भविष्य जो है वो हमें प्राप्त हो, और वो स्टार्ट से करनी चाहिए। बालक की ऐसी रक्षा गर्भधान संस्कार से ही प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन से संतान गर्भ में आई है उसी दिन से उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आजकल इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गर्भपात करवाते हैं। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति नहीं सिखाती। वास्तव में भक्तों, जितना जितना हमें अपराध एक सही जीते जागते कोई मनुष्य होता है उसकी हत्या करने वाले को जितना अपराध लगता है उससे कई गुना ज्यादा जो गर्भ में शिशु होता है उसकी जो हत्या करते हैं उसको अपराध लगता है। तो अगर उस हत्यारे को प्राण दंड दिया जाता है जो एक मनुष्य की हत्या करता है तो उस व्यक्ति को भी प्राण दंड देना चाहिए जो गर्भपात करवाते हैं। तो और वृद्धों की रक्षा इसलिए करनी चाहिए ताकि और उन्हें वो अवसर भी प्रदान करना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी कि पूरा जीवन तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए मतलब दान दे दिया। जब बच्चे होते हैं छोटे पूरा जीवन जो है जवानी के जो सुनहरे दिन होते हैं माता पिता अपने बच्चों के ऊपर निछावर जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता को ऐसा अवसर प्रदान करें कि वो मृत्यु के बाद उन जो नया जीवन उनको प्राप्त होने वाला है उसकी अच्छे से तैयारी करें, श्रेष्ठतम जीवन की तैयारी करने का उन्हें अवसर प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब बातें जो है वो उन्हीं पर असर करती हैं जिन्होंने सफल मनुष्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन जो कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसी सभ्यता ऐसी सोच रखते हैं उनको ये सब समझ में नहीं आता। उनको ना गाय की बात समझ में आती है, ना स्त्री सुरक्षा की बात समझ में आती है, और ना ही गर्भाधान गर्भ के अंदर शिशु हत्या की बात समझ में आती है। वो लोग तो बस केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन शास्त्र का यदि कोई पालन नहीं करता है, भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। कि जो शास्त्र की बात को नहीं समझता उसे ना कभी सुख मिलता है ना सिद्धि मिलती है और ना ही कभी परम गति प्राप्त होती है। और क्योंकि इन समस्त कुरुवंश के राजाओं ने इन नियमों का उल्लंघन किया था, दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उस दुष्ट को असमय मरना ही था, और जिस जिसने उनका साथ दिया था भगवान का नाम। यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं घातयित्वा सतो राज्ञ, उनका भगवान ने एक एक करके वध करवा दिया, कोई एक भी ऐसा नहीं बचा जिंदा जिसने वो दृश्य देखने का देखने के लिए वहां पर बैठा हुआ था उसमें से एक को भगवान ने नहीं छोड़ा। क्योंकि भगवान जो है वो ऐसे दुष्टों का संहार करने के लिए ही संसार में आते। भगवान स्वयं कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश करने के लिए ही मैं संसार में आता हूँ। और जो इस दुष्ट क्यों है, क्योंकि वो मेरे भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जब दुष्ट समाप्त हो जाएंगे तो परित्राणाय साधूनां तो हो ही गया ना, भक्तों को चिंता दुष्ट लोग ही देते ना, तो दुष्टों को भगवान सरसरे से मार ही डालते हैं क्योंकि वो भगवान है और अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। और इसके बाद सुत गोस्वामी बताते हैं कि युद्ध समाप्त हो गया और फिर या जय त्वाश्वमेधस्तम त्रिभिरुत्तम कल्प कै तद्यशः पावनम दीक्षु शतमन्यो रिवातनोत। याजयित्वा अश्वमेधस्य, याजयित्वा मतलब संपन्न करवाया अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि अब सारे शत्रुओं का वध हो गया था और उतना जल्दी नहीं, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं और आगे जाना है हमें महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित महाराज की रक्षा तक हमें पहुंचना है। तो सुत गोस्वामी इसको आगे लेकर जाते हैं कि उसके बाद भगवान काफी टाइम वहां पर रहे, युद्ध के बाद भी 4 महीने तक भगवान हस्तिनापुर में रहे थे। यहाँ पर ये सोचने की बात है कि वो भगवान जिनका अपना राज्य इतना संपन्न है, सोने की द्वारिका है, 16108 पत्नियां हैं, और भगवान यहाँ पर अपने भक्तों के साथ हस्तिनापुर में रहते। भगवान ज्यादातर द्वारिका से भी ज्यादा हस्तिनापुर में रहते थे और भगवान को अपने भक्तों के साथ रहना अच्छा लगता था, क्योंकि जिस तरह से भक्तों को कैसे भगवान के साथ रहना अच्छा लगता है, उसी तरह भगवान को भी अपने भक्तों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल का समाज कैसा है, वो अपने कार्यों में इतना बिजी होता है कि वो भगवान के साथ रहना नहीं चाहता है। अपने काम में, ऑफिस में वो सुबह से लेकर रात तक लटकने के लिए तैयार हैं, ऑफिस जाने के लिए दो दो घंटे तक ट्रेन में बैठकर भटकने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक घंटा भागवत की अगर कथा उसके व्हाट्सएप पे आ जाती, एक घंटे की कथा, एक घंटा भागवत कौन सुनेगा, वो भी उनको कठिन लगता है। लेकिन वास्तव में भक्तों जो प्रेम करते हैं वो सानिध्य चाहते हैं, और सानिध्य में अगर थोड़ी कठिनाई भी होती है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए वहीं पर हस्तिनापुर में चार महीने तक रहे और फिर याजई त्वाश्वमेधस्त, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए, त्रिभिर तीन अश्वमेध यज्ञ कराए महाराजा युधिष्ठर के द्वारा। उत्तम कल्पक है, यानी उस उत्तम काल में उत्तम वस्तु, उत्तम देश, उत्तम ब्राह्मण, ये जो यज्ञ करवाए थे उन्होंने अत्यंत ही सुंदर स्थिति में करवाए। और ये करने से क्या हुआ, तद यश पावनम दिक्षु, इस करने से उनका यश इतना ज्यादा फैल गया, युधिष्ठर महाराज का कितना फैल गया, शतमन्यो रिवातने, शतमन्यो मतलब जितना ज्यादा यश, शत का मतलब होता है सो यज्ञ करने वाले इंद्र को जो कीर्ति मिलती है, उतनी कीर्ति उन्होंने तीन यज्ञ करवा के अश्वमेध यज्ञ करवाए, इतना यश बढ़ गया इससे युधिष्ठिर महाराज का, जितनी कीर्ति इंद्र की होती है ना, क्योंकि वो भगवान उनके साथ थे, तो उनका एक एक कार्य वो सौ यज्ञ के बराबर था। तो इतना सुंदर तरीके से उन्होंने यज्ञ करवाया और इनकी कीर्ति जो है वो इंद्र की तरह बढ़ गई। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से तीन श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति सौ यज्ञ करने वाले इंद्र की ही तरह चतुर्दक फैल गई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है, स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की उपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम नहीं थी। इसका कारण क्या है कि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। हालांकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो स्वर्ग का राजा था इंद्र, लेकिन उनकी तुलना की जा रही है युधिष्ठिर महाराज से, लेकिन क्या कह रहे हैं वहां पर कि उनकी ख्याति उनसे भी ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो तो खाली स्वर्ग का राजा है और ये भगवान का शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त के ऊपर जब भगवान की इतनी कृपा होती है तो भले ही वो स्वर्ग का राजा भी क्यों ना हो तो भी वो उनसे महान भक्त जो है वो उनसे भी ज्यादा महान होते हैं। यद्यपि उन्होंने केवल तीन यज्ञ किए थे जबकि इंद्र ने पूरे सौ यज्ञ किए थे। इंद्र बनने के लिए किसी जीव को सौ यज्ञ करने पड़ते हैं, यह भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। भगवान सबों पर संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वह सदैव महानतम संपर्क में रहता है। जब भगवान के साथ उसका संपर्ण हो जाता है, उसका संपर्क हो जाता है, तो उसी से वो उत्तम हो जाता है। फिर उसके लिए कोई स्वर्ग का राजा बनना, किसी के देश का राजा बनना, वो सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो त्रिलोकी का जो भगवान है, त्रिलोकी का जो नाथ है, वो उसके साथ रहता, उसका संपर्क, उसका सानिध्य उसको प्राप्त हुआ है, तो ये सबसे बड़ा यश है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया, क्योंकि इंद्र का यश चतुर्दक है कि भाई वो कैसा है, जिस पर अमरावती का राजा यानी कि स्वर्गपुरी का जो राजा है, लेकिन तद यश पावनम दिक्षु हो के इंद्र से भी महाराजा युधिष्ठिर का यश और भी ज्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है क्योंकि वह सदैव भगवान के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से फैलती हैं तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है अपितु ग्राहकता की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो भगवान की शत प्रतिशत भक्त हैं, उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित रहती है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं कि अब यहाँ पर हमें ये प्रश्न उठता है ना कि भगवान ने उनके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा की, भगवान युधिष्ठिर आदि के ऊपर इतनी ज्यादा कृपा क्यों कर रहे हैं। हालांकि दूसरे भी तो भगवान तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस तरह सूर्य कभी ये नहीं सोचता कि मैं उसको ज्यादा सूर्य की प्रकाश दूं, इस इलाके में थोड़ा सा दूं, कभी भी ये नहीं सोचता। वो तो अपनी प्रकाश को हर सू पखेरना चाहता है, लेकिन फिर भी कोई कोई जगह ऐसी होती है कि वो सूर्य प्रकाश से विहीन रह जाती है। कहीं कहीं सूर्य का बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, कहीं पर थोड़ा होता है। तो इसका कारण क्या है कि वो ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती उसके अंदर। प्रकाश सूर्य ने अपने प्रकाश को कम नहीं किया, लेकिन उसने अपनी झोली इतनी फैलाई नहीं कि उसको पूरा पूरा का पूरा सूर्य प्रकाश प्राप्त हो। उसी तरह से जब जीव के ऊपर भगवान पूर्ण कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन जो जीव उस कृपा को ग्रहण करने की क्षमता अपने अंदर योग्यता नहीं लाता, तो फिर जाहिर सी बात है उसको कैसे। जैसे वर्षा जब होती है तो वर्षा ये नहीं कहती कि मैं रेगिस्तान में नहीं जाऊंगी, मैं समुद्र में नहीं जा, समुद्र में जाने का फायदा नहीं, रेगिस्तान में जाऊंगी तो फायदा नहीं, मैं सिर्फ ऐसी जगह पे ही वर्षा करूं जहां पर है ना खेत हो या फिर है ना गार्डन हो बाग हो, ऐसा तो कभी नहीं सोचते। ना ही कभी ये वर्षा सोचती है कि मैं उसको भिगवाऊं उसको नहीं भिगवाऊं। लेकिन जो मनुष्य छतरी लेकर आएगा, अम्ब्रेला लेकर आएगा, तो जाहिर सी बात है वो कैसे भीगेगा। अगर वर्षा में भीगना है तो उसकी योग्य बनना पड़ेगा, उस कृपा का पात्र होना पड़ेगा। अगर हमें भगवान की भी कृपा प्राप्त करनी है तो उसके लिए योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर। और वो योग्यता क्या है भगवान बताते हैं 9.29 में, ये भजन्ते तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। यदि वो मेरा भजन करेंगे भक्ति के साथ, प्रेम के साथ मेरा स्मरण करेंगे, तो मैते तेषु चाप्यहम्, वो मेरे होंगे और मैं भी उनका हो जाऊंगा। इसके लिए एक ही शर्त, भगवान ने नहीं कहा कि आपको अमीर होना है, आपको सुंदर होना है, आपको मतलब यंग होना है, कोई योग्यता नहीं। ये भजन्ते तुमाम व्यक्त, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो प्रेम से मेरे नाम का स्मरण करेगा तो मैं उसको उसका हो जाऊंगा। तो यहाँ पर क्योंकि पांडव गण बहुत ही स्नेह करते भगवान से, इसलिए भगवान उन्हीं के पास रहे और युधिष्ठिर से यज्ञ इत्यादि कराए। उसके बाद यहाँ पर श्लोक नंबर 7 में सूत गोस्वामी बताते हैं कि इतना करने के बाद भगवान ने 4 महीने के बाद एक दिन उनसे कहा कि अब मुझे छुट्टी दे दीजिए, अब मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं, आमंत्र पांडुपुत्राश्च शयने युद्धव संयुतम। आमंत्र पांडुपुत्राणाम, यानी कि जितने भी पांडव के पुत्र थे, भगवान ने उनसे विदा ली कि अब मैं जाना चाहता हूँ। और शयने युद्धव संयुतम, शयने किसको बोलते हैं, सात्विकी को। सात्विकी को जानते हैं वो कौन है, वो भगवान के बॉडीगार्ड थे। मतलब भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी बॉडीगार्ड रखने की, लेकिन सात्विकी का भगवान के साथ इतना स्नेह होता था कि वो सदैव भगवान के साथ रहना चाहते थे, हमेशा भगवान के साथ ही होते थे। और शयने योद्धव, उद्धव जो थे वो भगवान के सखा थे और वो भगवान को बुद्धि प्रदान करते थे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बताते 7.10 में, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों को बुद्धि मैंने दी है। लेकिन उद्धव जी, भगवान जब भी कोई बात, उनको कोई डिसीजन लेना होता था तो उद्धव से पूछ देते हैं, हाँ उद्धव बताओ तो सही ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मतलब बुद्धि भगवान उनसे लेते। तो ये भगवान की एक लीला है, यानी कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि भले ही मैं सर्वसमर्थ हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, जैसे तुम चाहते हो मैं वैसे तुम्हारा बनता हूँ। तो उद्धव और सात्यकी के सहित भगवान विदा ले रहे हैं और द्वैपायनाधिभिर्विप्रो, द्वैपायन यानी व्यास देव और आधिभिर्विप्रो और दूसरे जितने भी ब्राह्मण थे उनसे पूजित, यानी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की पूजा करवाई और पूजते प्रतिपूजितम, और भगवान ने भी समान रूप से उनकी पूजा की। यानी कि जिसको जैसा समान देना होता है भगवान ने, जैसे युधिष्ठिर महाराज और भीम भैया वो भगवान से बड़े होते थे तो भगवान जो है वो सदैव उनको प्रणाम करते थे। अर्जुन तो भगवान का प्रिय मित्र था, मतलब भगवान इतना प्रेम करते थे अर्जुन से, तो वो ऐसे मतलब आलिंगन करते थे उनका, और नकुल और सहदेव भगवान को प्रणाम करते थे और भगवान उन दोनों को आशीर्वाद देते थे। तो ये एक औपचारिकता है कि भाई इस तरह से इसके साथ इस तरह से संबंध है तो उसके साथ इस तरह से मिलना हो। आगे अनुवाद, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव के पुत्रों से विदाई लेकर सात्यकी व उद्धव के साथ प्रस्थान करने की तैयारी की। श्रील वेदव्यास जी आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद उन्होंने भी उन्हें बधाइयां दी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्रील वेदव्यास जी आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे, अतएव उन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने बधाइयां इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मान अर्थ दी कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों के प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान ने जानबूझकर इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। यानी कि भले ही वो जानते थे वेदव्यास जी और सारे ब्राह्मण कि भगवान है उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है पूज्यते प्रतिपूजितम, उन्होंने पूजा की तो भगवान ने कहा नहीं आप लोग पूज्य हो, भगवान ने बल्कि उनकी पूजा की। और इस तरह से लोग हमारे लिए यह उदाहरण प्रस्थापित किया कि हमें हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, आगे सूत गोस्वामी बता रहे, गंतुम कृतमतिर ब्राह्मण द्वारकाम रथमास्थित। गंतुम कृतमति, कृतमति का मतलब होता है संकल्प किया। अब क्योंकि भगवान ने सबसे विदा ले ली, पूजा वूजा हो गई, अब भगवान ने कहा मैं जा रहा हूँ, कृतमति यानी संकल्प किया क्या करने का, द्वारकाम रथमास्थितम, द्वारिका जाने के लिए भगवान तैयार हो गए और कहाँ पर, रथ पर स्थापित हो। और जैसे ही भगवान रथ पर चढ़े द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय क्या होता है, उपलेभे भिधावन्ति। उपलेभे मतलब भगवान ने देखा, अचानक भगवान अभी रथ के ऊपर बैठे और भगवान ने देखा, अभिधावती का मतलब होता है कि बहुत ही जोर जोर से दौड़ती हुई आ रही है, कौन, उत्तराम भयविह्वलाम। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी वो दूर दूर के आ रही है भगवान के पास, क्योंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया था। उत्तरा भय से चित्कारती हुई, चीखती हुई, भयभीत होकर, रो रो कर भगवान के पास आने लगी, बोले लगी, हे नाथ, हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। अभी भगवान जा रहे थे, वैसे सारे पांडवों को ये उस समय ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो वैसे ही दुखी थे। भगवान जितने भी उनके भाई बंधुओं की मृत्यु हुई थी उस समय जितना उनको दुख हुआ था ना, उनके मरने से भी अधिक शोक उनको भगवान श्री कृष्ण से विदा लेने का हो रहा था। तो वो सब ऐसे ही दुखी थे, वो भगवान की ओर देख रहे थे, आगे कोई नहीं देख रहा था। लेकिन क्योंकि कृष्ण अभी आगे जाने वाले थे, तो रथ के सामने से उसने भगवान ने देखा उपले भी, भगवान ने देखा कि उत्तरा भागती हुई भयभीत होकर चिल्लाती हुई उनके पास आ रही है। अनुवाद, जो ही वे द्वारिका रवाना होने के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही भयभीत उत्तरा तेजी से उनकी ओर आती हुई दिखाई पड़ी। तात्पर्य, पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव भगवान समस्त स्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं, वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्रों के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पांडव लोग, पांडव कुल के सारे सदस्य, उनको पता है कि यदि कहीं से रक्षा संभव है तो वो केवल भगवान ही है। वो पूरा समर्पित है, भगवान के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर करते हैं। जिस तरह से छोटा बच्चा, उसको पता होता है कि मेरी सुरक्षा माता पिता के अतिरिक्त और कहीं से संभव ही नहीं है, तो माता पिता बहुत सतर्क रहते हैं। बड़ा बच्चा होता है, वो अपनी योजना से भी अपने आप अपने को बचाने का या फिर प्रोटेक्शन के लिए वो अपने और भी योजना बनाता है। लेकिन जो छोटा शिशु होता है, माता पिता को पता है कि मेरे अतिरिक्त उसका कोई नहीं है। उसी तरह से जो भक्त भगवान के समर्पित होता है, तो भगवान जानते हैं कि इसको पता है कि मेरे अतिरिक्त उसकी कोई भी रक्षा नहीं करने वाला। तो भगवान भी बहुत ज्यादा सतर्कता से उसकी रक्षा करते हैं। और जैसे ही उत्तरा भगवान की ओर आ रही थी, और उत्तरा ने क्या कहा, सुत गोस्वामी बताते हैं, उत्तरो वाच पाही पाही महायोगीन देव देवी जगतपते नान्यम त्वदन्य त्वदभयम् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम पाही पाही महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम तद नान्यम त्वदभयम् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम पाही पाही महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा भगवान के प्रभाव को जानती थी, भगवान के विषय में उन्हें पता था कि हमारे समस्त कुल की रक्षा भगवान ही करते आए हैं। और आज जब उनके उत्तरा के ऊपर संकट आ रहे थे, उनके संतान के ऊपर संकट आ रहे थे, तो डायरेक्ट से भगवान के पास गए। हालांकि उस समय बहुत वहां पर सारे खड़े थे, लेकिन फिर भी उत्तरा जो है वो भगवान के पास आई और जोर जोर से कहने लगी, पाही पाही महायोगी, रक्षा करो रक्षा करो, बचाओ बचाओ हे महायोगी। क्योंकि आप महायोगी हैं, आप सबसे उत्तम उपाय जानने वाले हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि कितना कष्ट मुझे अभी हो रहा है, ये जो इतना सारा कष्ट है। क्योंकि आज तक जिस कष्ट से हम गुजरे हैं, उसका उपाय आपने यहाँ पर महायोगीन कहा उन्होंने, कि केवल आप ही समस्त कष्टों को उभारने का उपाय जानते हैं। देवताओं में आप सबसे उत्तम हैं, जगत का पालन करने वाले हैं, आप सबका पालन करते हैं, आपके कारण ही सारे संसार का पालन होता है। आज मेरे ऊपर संकट आया है और आप महायोगी देव देवी जगतपति, आपने सबकी रक्षा की है, मेरी रक्षा का भार भी अब आपके ऊपर है। आपके अतिरिक्त शरण लेने योग्य और कोई नहीं, इस पूरे जगत के पति आप हैं, तो कोई और है ही नहीं, तो फिर इसलिए मैं आपकी शरण में आया। तो या मानो भगवान कृष्ण उत्तरा को संकेत दें कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो कि और कोई नहीं, ये अर्जुन अकेले समस्त योद्धाओं का जिसने वध किया है, ये भीम, उसने तो प्रतिज्ञा ली थी कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को उचीर फाड़ के रख दिया उसने, इन सब के होते हुए आप ये कैसे सोच सकती हो कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं रक्षा करने वाला। तो उत्तरा बता दी, उत्तरा भगवान के प्रभाव को जानती थी कि उनके अतिरिक्त और कोई रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उत्तरा कहती है नान्यम तदा भयम पश्य, आपके अतिरिक्त नान्यम मतलब नहीं नहीं प्रभु, आपके अतिरिक्त तदा भयम पश्य, मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा है जो कि इस यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ पर जो सभी लोग मुझे दिख रहे हैं वो तो केवल मारना जानते हैं, सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण है। यहाँ पर देखें तो भीमसेन ने कितने सारे लोगों की मृत्यु की है, अर्जुन के द्वारा कितनों का अज तक वध हुआ है, ये सब केवल जान से मार सकते प्रभु, मगर आज तक कोई ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ जो जान जिसकी जा रही हो उसको बचा सके। बचाने वाले तो केवल आप हैं, केवल आप ही जिला सकते हैं। जैसे हम देखें कि कितने सारे मर्डर्स हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आज इसकी इसने इसकी हत्या कर दी, इसने इसकी हत्या कर दी, यहाँ पर ही हत्या हो गई, बम ब्लास्ट हो गया, मर गए। कभी हम लोग ऐसी न्यूज नहीं पढ़े कि इसकी मृत्यु हो गई थी और उसने उसको जिंदा कर दिया, कभी भी ऐसी आज तक न्यूज अगर कभी एक आध आई भी होगी तो वो भी ऐसे ही झूठ होगा, उसमें कोई सत्यता नहीं होगी, क्योंकि जिंदा कोई कर नहीं सकता, जीवन केवल भगवान ही दे सकता है। तो यहाँ पर उत्तरा भगवान को कहती है नानम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर, यहाँ पर सब मार ही सकते हैं कृष्ण, यदि कोई बचा सकता है तो केवल आप हो। अनुवाद, उत्तरा ने कहा हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं दिखता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है, द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्णतः आत्मा है, जिसमें भौतिक गुण का लेश मात्र भी नहीं पाया जाता है। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परमेश्वर है और अन्य सभी उसके सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अनिवार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय के दाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस जगत में अपने को मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस संसार में भले ही लोग अपने आप को परमेश्वर घोषित करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के अतिरिक्त और कोई भी मृत्यु के क्रूर हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उत्तरा जो है समस्त सहारों को छोड़कर भगवान को कहती है नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु से मृत्यु के भय से रक्षा कर सके। तो इतना कहने के बाद उत्तरा ने सोचा कि कहीं भगवान ये ना सोचें कि उत्तरा तुम जीकर क्या करोगी, तुम्हारा तो वैसे भी पति की मृत्यु हो गई है और अब तुम अपने जीने के लिए इतना ज्यादा उत्साह के साथ मेरे पास आ रही हो, बचाओ बचाओ। तब उत्तरा कहती भगवान को अभिद्रावती मामीश शरस्तक्ता यसो विभो, अभिद्रवती मामीश, हे प्रभु, ये मेरी ओर आ रहा है, माम मतलब मेरी ओर, ईश हे प्रभु, भवती अभिभवती मतलब मेरे पास आ रहा है, शरस्तप्त अग्नि तुल्य अस्य मना लोहा, विभु हे महान, उत्तर कहती है अभी द्रवतमाम ईश शरस तप्ता यसो विभु। हे भगवान, हे महान कृष्ण, आप देखो मेरे पास ये तपता हुआ लोहे का अंगार क्या आ रहा है, और ये मुझे लगता है कि इसके द्वारा सब कुछ भस्म होने वाला है, लेकिन मुझे मेरे मरने की कोई चिंता नहीं है। कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, मेरी तो इच्छा है, कामम मतलब मैं इच्छा कर रही हूँ कि भले ही मुझे मार डालेंगे। कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, मुझे भले मार डाले तो मैं तो क्योंकि पहले से ही अपने पति के वियोग में मर चुकी हूँ, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम। मामे गर्भो निपात्यताम का मतलब होता है कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे गर्भ को कोई हानि पहुंचे। माम यानी मुझको, हे नाथ, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये पांडवों के वंश की आखिरी संतान है। और उत्तरा वास्तव में भगवान के यश को जानती थी और भगवान के यश को बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि यदि पांडवों के वंश में कोई भी नहीं रहा तो फिर लोग क्या कहेगा कि भगवान की शरण ली पांडवों ने और उसके पूरे वंश की तो हत्या हो गई, कोई नहीं बचा उनके वंश में। इसलिए भगवान को उत्तरा कहती है कामम दहतु माम नाथ, है भगवान मुझे भले ही मार डाले लेकिन पांडवों के वंश की ये संतान जो मेरे गर्भ में पल रही है उसको बचा लीजिए भगवान, इसी में आपकी कीर्ति है। तो इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि पांडवों ने आपकी शरण ली है। और श्री प्रभुपाद ने पहले बताया कि भगवान की जो शरण ले लेता है तो वो उसका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनुवाद, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक अग्नि तुल्य लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे लेकिन वह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। कृपया मेरे लिए इतना करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराजा परीक्षित उसके गर्भ में थे, अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से सुरक्षा करे, अतएव उसको भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आई। वह एक महान राजा की पुत्री, एक वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्य थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। आज अभिमन्यु ने अपने क्रोध का क्षमा, अश्वत्थामा ने जिसका बहुत ज्यादा अपमान किया था, उसके बाल काट लिए थे, उसकी मणि ले ली थी, उसका जो इतना सारा अपमान हुआ था उसके कारण वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि अब वो सोच रहा था कि पांडवों के वंश का नाम और निशान मिटा दूंगा। इसलिए उसने अब उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज पल रहे थे उनके ऊपर वार किया, और जैसे ही उनके ऊपर वार किया है तो उत्तरा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पुत्र संतान की सुरक्षा के लिए भगवान के पास आई और भगवान को कह रही है कामम दहतु माम नाथम, आपकी इच्छा है तो भले मुझे मार डालो लेकिन मेरे इस संतान की रक्षा करो। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद भगवान क्या करते हैं। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।